ओम शांति। जैसे हम सबके प्यारे ब्रह्मा बाबा 18 जनवरी 1969 को अव्यक्त हो गए और हम उनका 54th अव्यक्त दिवस मना रहे हैं, ब्रह्मा बाबा कैसे अव्यक्त हुए, कैसे वो अव्यक्त फरिश्ता बन के हमारे बीच से उड़ गए। जैसे कल बाबा ने मुरली में भी कहा ना कि कैसे ब्रह्मा बाबा इस पिंजरे से, देह रूपी पिंजरे से कैसे एकदम पिंजरा खुल गया और ब्रह्मा बाबा उड़ गए, आत्मा उड़ गई। तो हम आत्माओं को भी उनको फॉलो करना है, हमको भी उड़ना है कि नहीं उड़ना है, हमको उड़ना है, इसी पिंजरे में रहना है, देह रूपी पिंजरे में से उड़ना है ना। तो आज हम ब्रह्मा बाबा के जीवन को देखते हुए कैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त बने, कैसे वो अव्यक्त फरिश्ता बने, हम भी उन्हीं को फॉलो करके हम भी ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बन जाए, उसकी क्या विधि हो, आज उसी पे हम गहराई से चर्चा करेंगे। और सबकी सब बातें हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में लाने लायक हैं। कल की मुरली तो बहुत ही वंडरफुल थी, उसी मुरली से भी कुछ पॉइंट्स लेंगे, संडे की मुरली से भी कुछ पॉइंट्स, और बहुत सारी मुरलियां बाबा की जो अभी तक चली हैं उन्हीं मुरलियों के पॉइंट्स को लेते हुए हम आगे बढ़ते हुए देखें कैसे हम ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त अवस्था बन जाए। देखिए ब्रह्मा बाबा जब दादा लेखराज थे तो दादा लेखराज या हम कहें अपने को भी कंपेयर करें, कोई भी मनुष्य अगर अंतर्मुखता अपना ले तो मनुष्य प्लस अंतर्मुखता प्लस बेहद की वैराग्य वृत्ति प्लस तन मन धन और संबंध, चार चीजें, तन मन धन और संबंध समर्पण कर दे शिव बाबा को तो हम बन जाते हैं ब्राह्मण। जैसे दादा लेखराज ने क्या किया, अपना पहले अंतर्मुखता को अपनाया, फिर उन्होंने बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण की, और तीसरा फिर जब शिव बाबा की पधरामणी हो गई तो तब से ही ब्रह्मा बाबा ने अपना तन, पुराना तन, पुराना मन और पुराना धन और पुराने संबंध सब कुछ बाबा को समर्पण कर दिया, और तब से वो क्या बन गए, दादा लेखराज से ब्रह्मा बाबा बन गए। और ऐसे ही अगर हमें सचमुच में ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण बनना है तो पहले हमें ब्रह्मा बाप समान ही, हमें पहले अपना अंतर्मुखी बनना पड़ेगा, बाह्यमुखता को छोड़ना पड़ेगा, उसकी डिटेल में हम जाएंगे कैसे हमें करना पड़ेगा, तो अंतर्मुखी बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बाह्यमुखी भी बने रहें और हम सच्चे ब्राह्मण भी बन जाएं, क्योंकि सच्चा ब्राह्मण पहले बनना ही पड़ेगा। अगर हमें ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनना है, अव्यक्त अवस्था बनानी है, तो हमें सच्चा ब्राह्मण बनना ही पड़ेगा, अव्यक्त हमें अंतर्मुखी बनना पड़ेगा, दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति अपनानी पड़ेगी, तीसरा अपना, क्योंकि हमारी बुद्धि और मन कहां फंसा रहता है, चार चीजों में, एक तो अपने पुराने तन में ही उसके विचार चलते हैं, बुद्धि भी मन भी इसी में लगा रहता है, मन में जो भरा पड़ा है पुराने स्वभाव संस्कार भरे पर उसमें लगा रहता है, धन में लगा रहता है, और संबंध जो भी हमारे लौकिक संबंध होते हैं उनमें फंसा रहता है। जब तक हम सच्ची दिल से इन चारों को समर्पण नहीं करते हैं शिव बाबा को, तब तक हम सच्चे ब्राह्मण बन नहीं सकते। और जब सच्चे ब्राह्मण बन जाएं, सच्चे जैसे ब्रह्मा बाबा सच्चे ब्राह्मण बने, ब्रह्मा बाबा बने, तो तब से जब ब्रह्मा बाबा ने जो चार मर्यादाएं हैं हम ब्राह्मण जीवन की, कौन कौन सी, पवित्रता, दूसरा शुद्ध सात्विक भोजन, वैष्णव भोजन के जिसे कहें, तीसरा सत्संग, और बाबा और मुरली, बस सारा टाइम एक ही नशा, बाबा और मुरली, यही सत्य है ना, दो ही चीज सत्य है, बाबा सत्य है और मुरली सत्य है, बस बाबा की बुद्धि सब चीज से हट गई, एक बाबा रह गया, शिव बाबा उनकी बुद्धि में रहा, ब्रह्मा बाबा ने अपने मस्तक में, नैनों में, मुख में, रोम रोम में, सूरत में, मूरत में, पूरे अपने व्यक्तित्व में, हस्ती में शिव बाबा को समा दिया। ऐसा ब्रह्मा बाबा ने किया तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको मस्तक में अर्थात अपने निराकार आत्मा बन के, अशरीरी आत्मा बन के परम धाम घर में श्री बाप से कंबाइंड रहना पड़ेगा, तो मस्तक में शिव बाबा को समाना होगा और नैनों में ब्रह्मा बाबा को समाना होगा। तो जब से बाबा ने ये किया और हमें भी जब से हम ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण बनते हैं, हमें तब से क्या करना पड़ता है? ये चार नियम, चार मर्यादाएं। पहला, पवित्रता की गहराई से पवित्रता को अपनाना पड़ता है। गहराई से, जितनी अधिक गहराई उतना अधिक करंट, उतनी अधिक धारणा, उतनी अधिक शक्ति, है ना? चार चीजें उसी हिसाब से मिलती हैं। तो पवित्रता, दूसरा शुद्ध सात्विक भोजन, बाबा की याद में बना हुआ सातों गुणों को बढ़ाने वाला भोजन, ऐसा अन्न हमारे अंदर जाए जो सातों गुणों को बढ़ाए, आत्मा के सातों गुणों को बढ़ाए। और सत्य का संग, बस बाबा और मुरली दो ही सत्य, इसका संग। और चौथा, 36 दैवी गुणों की धारणा, वो दैवी गुणों की धारणा भी हमारे अंदर आ जाए। जब ये तीन चारों हमारे अंदर चीजें आती हैं, और सुबह सुबह अमृत वेला कभी भी मिस ना हो, सच्चा ब्राह्मण कभी अमृत वेला मिस नहीं करता है, कुछ भी हो जाए, चाहे रात को हम सारी रात बिजी भी रहे हों, 11, 12, 1 बजे तक भी बिजी रहे हों, वैसे तो बिजी रहना नहीं चाहिए, हमें समय पर सोना चाहिए, 9:30 सो जाना चाहिए। अगर आप बिजी भी रहे हैं तो भी 3:30 बजे उठ के अमृत वेला करना ही है, पावरफुल अमृत वेला करना है, बीजरूप स्थिति में बीजरूप बाप से कंबाइंड होना ही है, स्वयं को और विश्व को सकाश देनी ही है। फिर मुरली, कभी भी मुरली मिस ना हो, क्लास में आना। तीसरा, सारा दिन जो मुरली में सुना है उसका सारा दिन मनन चिंतन मंथन सिमरण करना, अटेंशन। और चौथा, वेंटिलेशन, सोने के पहले सच्चा सच्चा पोता मेल बाबा को देना, सुबह से लेकर रात तक कितने मिनट हम बाबा की याद में रहे, कितने घंटे बाबा की याद में रहे, और क्या क्या हमसे गलतियां हुई उनकी क्षमा लेना, और अगले दिन के लिए हमें क्या करना है उसकी प्लानिंग करना, दिनचर्या, जो आज का वरदान था, दिनचर्या सेट करना अगले दिन की, या दृढ़ता से बाबा से प्रतिज्ञा करना और फिर बाबा की याद में ही सो जाना। ये चार चीजें, अमृत वेला, मुरली, अटेंशन और वेंटिलेशन, ये चार नियम, ये जब धारण करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे पेपर आने लगते हैं। तो सच्चा ब्राह्मण प्लस सहनशीलता, सहनशीलता, बेफिकर बादशाह, परमात्म चिंतन से बेफिकर बादशाह, और कर्म योगी सो निरंतर योगी। जब ये स्थिति आती है तब हमारे त्याग आता है। त्याग माना मैंपन, मेरेपन का त्याग करते हैं, तो निराधार बन जाते हैं, निराकारी अवस्था आती है। और निराकारी अवस्था आने से, जब निराकारी बन, निराकारी आत्मा बन, निराकारी वतन में निराकारी बाप से कंबाइंड होते हैं, तो ज्वालामुखी योग अग्नि जागृत होती है, उससे हमारे 63 जन्मों के पाप कर्म भस्म होते हैं, संपूर्ण निर्विकारी अवस्था आती है। और जब संपूर्ण निर्विकारी अवस्था आती है तो हम बीज रूप अवस्था, हमारी जो बीज रूप स्थिति है, तो उस बीज रूप अवस्था में स्थित होकर के और कल्प वृक्ष जड़ में उस बीज रूप आपसे कंबाइंड होकर सारे कल्प वृक्ष की, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की सभी आत्माओं की अष्ट रत्नों के साथ मिलकर के हम पूरे कल्प वृक्ष को सकाश देते हैं। सत्ययुग की सभी आत्माएं अपने परफेक्शन को पाएं, संपूर्ण स्थिति को पा जाएं, त्रेता की आत्माएं अपनी संपूर्ण स्थिति को पा जाएं, और द्वापर और कलयुग में उतरने वाली आत्माएं जो उनका लक्ष्य मुक्ति का है उसको प्राप्त करें। सारे जिस आत्मा को जो चाहिए उसके लिए हम सकाश देते हैं सुबह सुबह। इसे कहते हैं बेहद की निस्वार्थ भाव की सेवा। तो ये हम जब करते हैं तो इससे हमारे अंदर हमारे हमेशा निरंतर बाप का साथ अनुभव होता रहता है, और हमें महसूस होता है करावनहार बाप है, करणहार मैं हूं। रादर ये कहें करावनहार शिव बाबा है, तो निरंकारी अवस्था आती है, और निरंकारी अवस्था आने से हम स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। किसके? अव्यक्त स्थिति के। हम व्यक्त से परे चले जाते हैं। वो जो हमारी अव्यक्त स्थिति है, फरिश्ता स्थिति है, और अशरीरी कहें, निराकारी कहें, वो अवस्था, हम यहां रहते सूक्ष्म वतनवासी बन जाते हैं, और यहां रहते हैं हम निराकार धाम के, या कहें अशरीरी बन जाते हैं। अशरीर स्थिति की स्थिति ऑटोमेटिक हो जाती है और हम नष्ट हुआ स्मृति लब्धा बन जाते हैं। तो ये बेसिक हमें अटेंशन रहे कि अगर हमें सच्चा ब्राह्मण बनना तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मनुष्य, पहले अंतर्मुखता, दूसरा बेहद की वैराग्यवृत्ति, तीसरा तन मन धन संबंध का समर्पण करना पड़ेगा। और जब सच्चे ब्राह्मण बनेंगे तो हमें सहन करना पड़ेगा, जब नियम मर्यादाओं को फॉलो करेंगे तो सच्चा सच्चा ये मत समझें कि मुझे सहन नहीं करना, मुझे सहनशीलता, सहनशीलता का मतलब खाली सहन करना नहीं है, सहन करके समाचार शक्तियों से बनती है सहनशीलता, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और सहयोग करने की शक्ति, जो आत्माएं मुझे तंग करती हैं उनको सहयोग करना। तो सहनशीलता धारण करनी पड़ती है, जब सहनशीलता धारण करनी पड़ती है तो बाप के साथ का अनुभव होता है, सदा परमात्म चिंतन ऑटोमेटिक हो जाता है, तो हमारे अंदर बेफिक्री, बेफिक्र भाषा बनते हैं, फिर कर्म योगी, निरंतर योगी बनते हैं। जब निरंतर योगी बन जाते हैं तो करंट आती रहती है हमेशा, तो हमारे अंदर मैंपन, मेरापन का हम त्याग कर पाते हैं इजीली, और तब निराकारी आत्मा बनके निराकार बाप से जब कंबाइंड होते हैं तो ज्वालामुखी योग अग्नि जागृत होती है, जिससे सभी पिछले जन्मों के पापक्रम भस्म हो जाते हैं, संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं। और जब संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं तो बीज रूप अवस्था में स्थित होकर के कलवृक्ष जड़ में अष्टत्नों के साथ पूरे कलवृक्ष को सकाश देते हैं, और ऐसी बेहद की निस्वार्थ भाव की सेवा में निरंकारी बना देती है, और जिससे हम नष्टो मोह स्मृति लब्धा, या कहें ब्रह्मा बाप समान, जैसे ब्रह्मा बाबा एक अव्यक्त हो गए, एक सेकंड में पिंजरा खुल गया और पंछी उड़ गया, ऐसी स्थिति हमारी बन जाती है। तो अब इसकी थोड़ी डिटेल में हम चलते हैं, समझते हैं कि कैसे हमें ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनना है। ब्रह्मा बाबा जब लगभग 52 साल के हुए 1928 में, दादी जी, दादी निर्मल शांता जी और उनकी लौकिक पुत्री बताती थी, पुट्टू दादी हमारे साथ काफी समय रही थी, कि ब्रह्मा बाबा 52 साल की उम्र से ही लगभग 1928 से बहुत अंतर्मुखी हो गए थे, बहुत कम बात करते थे, अधिकतर चुप ही रहते थे। बाबा का आना जाना रॉयल फैमिलीज में था, नेपाल के राजा के पास, उदयपुर के राजा के पास, जोधपुर के राजा, बड़ौदा के राजा के पास, और भी राजाए थे जिनके आसपास जाना था। तो बाबा देखते थे राजा कैसे दरबार में, बाबा जब बैठते थे दरबार में, बाबा को बैठना अलाउड था, तो बाबा देखते थे कैसे राजा अपने मंत्रियों से बात करता है, कैसे उनका हालचाल पूछता है। तो बाबा ने उन्हीं दिनों से ही अपने दरबार लगाने शुरू की, जो कल बाबा ने, बाप दादा ने कल मुरली में भी कहा कि ब्रह्मा बाबा ने रोज अपनी दरबार लगाई, स्वराज्य की दरबार लगाई, अपने कर्मेंद्रियों के दरबार। अंतर्मुखता का मतलब ही है क्या है, अंतर्मुखता का मतलब क्या है, चेहरे पर हमारे पांचों कर्मेंद्रियां हैं, आत्मा यहां है, मन बुद्धि यहां पर है, मन सारे शरीर में फैला हुआ है, और यहां से सोचने कार्य करते हैं ना, तो सोच मेरी क्या हो, दुनिया की सोच नहीं, दुनिया में क्या हो रहा, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये सोच नहीं, आत्मिक शक्ति, मेरी सोच में आत्मिक शक्ति हो। आत्मिक शक्ति का मतलब क्या, ये आत्मा की सात एनर्जी है ना, जो ज्ञान, पवित्रता, ज्ञान माने सत्य की समझ, ज्ञान माने ABCD, पवित्रता, शांति, सत्य और निस्वार्थ प्रेम, अतिंद्रिय सुख, आनंद, और आठों शक्तियां, नेमली सत्य को परखने की शक्ति, पहली शक्ति सत्य को परखने की शक्ति, इसे विवेक भी कहते हैं, विजडम भी कहते हैं, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति जिसको दिव्य बुद्धि भी कहते हैं, विस्तार को सार में लेने की शक्ति, माना देह और देह की दुनिया से मन बुद्धि को समेट के बिंदी आत्मा बन के, और सूक्ष्म शरीर क्या है हमारा, सूक्ष्म शरीर हमारा मन है, मन सारे शरीर में फैला हुआ है, हमें इसको सूक्ष्म अर्थात पवित्र बनाना है। ये जो बाबा की मुरली है ना, मनन चिंतन मंथन सिमरण करके हमारे हर विचार में भर जाए, मन के चार एस्पेक्ट होते हैं जिसे इंग्लिश में टीम कहते हैं, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज, संकल्प, भावना, वृत्ति और स्मृति। तो जो बाबा की मुरली में जो बाबा संकल्प दे रहे हैं हमें, उन संकल्प, किसी भी संकल्प को हम संबंध से याद करते हैं, गहराई से याद करते हैं, बार बार उसको हम महसूस करते हैं, रियलाइज करते हैं, रिवाइज करते हैं, रियलाइज करते हैं, तो वो संकल्प भावना में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे बाबा की मुरली के महावाक्य को हम गहराई से अगर हम कि मेरे बाबा ने मुझे कहा है, खाली बाबा नहीं, वो मेरी मां भी है, मेरा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, बंधु माना बड़ा भाई भी है, सखा माना दोस्त भी है, साजन भी है मेरा, सर्जन भी है मेरा, और मेरा बच्चा भी है, नौ मुख्य संबंध। जब सरल संबंध से उसकी एक एक महावाक्य को हम रिवाइज करते हैं, रियलाइज करते हैं, चिंतन मंथन करते हैं, सिमरण करते हैं, लगन से उसमें मगन हो जाते हैं, तो वो विचार, वो संकल्प भावना में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे माँ बच्चे का संबंध होता है ना, बच्चा कुछ माँ को कहता है तो माँ उसको बार बार रिवाइज करती रहती है, बार बार उसकी बुद्धि में मेरे बेटे ने कहा, मेरे बेटे आज ये करना है, आज ये करना है, तो भावना पैदा हो जाती है, और भावना से वाइब्रेशन पैदा होते हैं जो हजारों किलोमीटर दूर भी सफर करते हैं। ऐसे जब मैं बाबा की मुरली है, बाबा की मुरली का मनन चिंतन मंथन करता हूं, सिमरण करता हूं, उस लगन से मैं उसको बार बार अंदर चिंतन, मुझे बनना है ऐसा, मंत्र कैसे बनना है, बुद्धि भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, बाबा भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसमें से मक्खन निकलता है। सिमरण माना जो मक्खन निकला उसको मैं कर्म करते हुए बुद्धि में यूज करता रहता हूं, तो सिमरण में मगन हो जाते, जैसे मक्खन खाने में मगन हो जाते हैं ना, तो ऐसे जब करते हैं तो क्या होता है हमारे अंदर, वो हमारे अंदर उसमें मगन हो जाने से वो हमारी संकल्प भावना में परिवर्तन हो, वाइब्रेशन, मैं बाबा की मुरली को रिवाइज कर रहा हूं उसी लगन से कर रहा हूं, तो मेरे वाइब्रेशन बाबा तक जाने लगते हैं, और मैं बाबा को उस भावना से याद कर रहा हूं तो बाबा मुझे पदम गुणा याद करता है, हजार गुणा याद करता था, तो बाबा के वाइब्रेशन मेरे तक पहुंचने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें हजार गुना पदम गुणा याद करता हूं, मेरे ऊपर छत्र छाया बन जाती है, कैचिंग पावर, टचिंग पावर बढ़ जाती है। तो ये मुरली जो है ना बाबा की, तो ये जो मुरली है, जैसे मैं सोच, मेरी सोच हमेशा कैसे चल रही है, अंतर्मुखी का मतलब क्या है, मैं अंदर जाकर के अंदर देखूं, मैं आत्मा को देखूं, सोचूं, आत्मा को रियलाइज करके मैं देह नहीं, इस देह को चलाने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा, चलते फिरते उठते बैठते ये नशा लंगन निरंतर बना रहे कि मैं आत्मा कैसी हूं, कैसे परमात्मा के साथ मेरे सब संबंध है, एक एक संबंध को महसूस करूं, उसमें खो जाऊं, मां का संबंध क्या है, बाप का संबंध क्या है, टीचर का संबंध क्या है, सतगुरु मुझे कैसे पालना देता है, बंधु के रूप में क्या कर रहा है, सखा के रूप में क्या कर रहा है, साजन के रूप में क्या संबंध है, क्या मैंने उसको यूज किया है, उसके अनुभव की अथॉरिटी बना हूं, तो ऐसे अपने आप से बार 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 रिवाइज करने की आवश्यकता है। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था, जब तक आप मुझे अपना बच्चा नहीं बनाते हो तब तक मैं भी तुमको अपना बच्चा नहीं बनाता हूं। तो अंतर्मुखता का मतलब यह है कि अंतर्मुखी मतलब मेरी सोच अंदर चली जाए, सोच में आत्मिक शक्ति हो, सत्य की समझ हो, और मेरे शरीर में या मेरे आसपास परिवार में या मेरे आसपास की जो भी वर्किंग प्लेस है, कार्यस्थान है, उसमें जो कुछ भी ऊपर नीचे होता है वो ड्रामा में मेरे अपने कर्मों का हिसाब किताब है, उसको फुल स्टॉप लगा के और मैं अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर के उस परमात्मा पिता सत्य स्वरूप सत्य परम पिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु के साथ कंबाइन होकर के असोचता बाप से कंबाइन होकर हर कर्म करता रहूं, यही मेरा कर्तव्य है, यही ड्रामा है, तो भविष्य मेरा क्या होगा, उज्जवल है ही है, मैं फरिश्ता सुदेवता बनने वाला है। तो अंदर में हमारी सोच हमेशा ऐसी चलती रहे, इसे कहेंगे अंतर्मुखता, है ना, जो ब्रह्मा बाबा हमेशा करते रहे। ब्रह्मा बाबा अंतर्मुखी बन गए थे शुरू से, और फिर रात को रोज दरबार लगाते थे बाबा, हम भी अपनी दरबार लगाएं, अपने मन बुद्धि संस्कार, मन प्रधानमंत्री है, बुद्धि दीवान है, दीवान होता ना हमारे, दीवान पहले दीवान होता था एक राजा के साथ, और संस्कार सेनापति हैं, उनसे रोज हालचाल पूछे शाम को, कैसा है तुम्हारा मन के बारे में, कारोबार कैसी चल रही है, बुद्धि से पूछे कैसा चल रहा है, और कर्मेंद्री अपने संस्कारों से पूछे किस तरह से तुम्हारा कार्य कैसे चल रहा है, क्या नियम मर्यादा जो बनाई गई है हमारे, जो चार नियम चार मर्यादा बने उसके अनुसार चल रहा है कार्य, नहीं चल रहा है, अंतर्मुखी बने हैं, तो अंतर्मुखता की ऐसे सोच, ऐसे देखने में भी आत्मिक शक्ति हो, ज्ञान भी हो, एबीसीडी भी हो, पवित्रता भी हो, शांति भी हो, मेरे देखने में शांति हो, सत्य प्रेम, निस्वार्थ प्रेम हर एक के प्रति हो, अपने प्रति भी हो और उसके प्रति भी हो, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति के साथ मैं किसी को देखूं, आनंद के साथ, और आठों शक्तियां सत्य को प्रकट करने की शक्ति, यथार्थ निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को सार में लाने की शक्ति, देव और देवी दुनिया के विस्तार से मन बुद्धि को समेट के और बिंदी आत्मा बन के सूक्ष्म शरीर, ये मन जो है सूक्ष्म शरीर, जैसे बात कर रहा था ना सूक्ष्म शरीर, माना इन संकल्पों जो मुरली के संकल्प है, मुरली में जो बाबा के महावाक्य, उनको हम भावना में परिवर्तन करते चाहे अपने अंदर भावना, और भावना से वाइब्रेशन बाबा तक जाने लगते हैं, और जब उन्हीं भावनाओं में हम रहने लगते हैं, बाबा ने आज ये कहा, आज ये वरदान दिया, आज ये स्लोगन दिया, आज ये व्यक्तिशाला था, आज ये सोमान था, तो सारा दिन जब उसी नशे में हम रहने लगते हैं, उसी नशे में उसी में इंटॉक्सिकेटेड रहने लगते हैं, तो हमारी वृत्ति, वृत्ति क्या होती है, जैसे बिंदु एक बार बिंदु है तो उसे संकल्प कहेंगे, 10-15 बार हो गए तो उसको भावना कहेंगे, मेरे अंदर भी बाबा के अंदर भी चल रहा है वही बात, तो भावना हो गई, दो के बीच में वाइब्रेशन हो गए, और जब मैं उसी भावनाओं में रहने लगता हूं तो ये सर्कल पूरा हो जाता है, और वही सर्कल घूमता रहता है, वही विचार बार बार घूमते दिमाग में घूमते रहते हैं, तो इसको कहते हैं वृत्ति, वृत्ति माना सर्कल, वृत्त से आया है, पूरा वृत्त बन जाता है और मेरे दिमाग में वो सर्कल बन जाता है, वही विचार, जैसे पुरानी बातें कई बार नहीं होती हमारे अंदर, किसी ने कुछ कह दिया तो वही बार बार घूमती रहती है, वो उनकी वृत्ति खराब हो जाती है, क्योंकि मेरे अंदर बाबा के जो संकल्प है वो वृत्ति बन जाती, तो वृत्ति से वायुमंडल बन जाता है, आसपास एक आभा मंडल क्रिएट होता है ना, और उस वायुमंडल में जिस जो मैं संकल्प कर रहा हूं, शांति का संकल्प कर रहा हूं तो शांति का वायुमंडल बन जाएगा, सत्यम निस्वार्थ प्रेम का संकल्प कर रहा हूं तो सत्यम निस्वार्थ प्रेम का वायुमंडल बन जाएगा, अत्यंत सुख के संकल्प कर रहा हूं तो अत्यंत सुख का वायुमंडल बन जाएगा, आनंद का कर रहा हूं तो आनंद का वायुमंडल बन जाएगा, एक एक शक्ति का मैं कर रहा हूं तो एक एक शक्ति का वायुमंडल बन जाएगा, ज्ञान का मनन चिंतन कर रहा हूं तो ज्ञान का वायुमंडल बन जाएगा, उस वायुमंडल में जो भी आएगा उसको महसूस होगा, जैसे बाहर सर्दी है अंदर गर्मी है, तो अंदर से बाहर ठंडी 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 हवा, टेम्परेचर 10 है, अंदर 15 है या 20 है 25 है, तो बाहर अच्छा लगता है, बाहर ठंडी लगती है, वो फील होगा, और जो वायुमंडल फील होता है, जैसे कहते जैसी वृत्ति फिर वैसी दृष्टि बनती है, जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा मुझे लोग दिखाई देते हैं, तो वैसा ही वायुमंडल बन जाता है, और उस वायुमंडल को जो अंदर फील होता है वो अंदर रिकॉर्ड हो जाता है, उसको स्मृति कहते हैं, और एक बार स्मृति बन गई तो अंदर रिकॉर्डिंग हो गई, उसके अनुसार फिर ऑटोमेटिक क्या होता है, मेरा देखना, मेरा पढ़ना, मेरा सुनना, मेरा बोलना, मेरा खाना पीना, हर चीज बदल जाती है, चेहरा भी बदल जाता और चलन भी बदल जाते, मेरे चलन ना कर्म बदल जाते, चेहरा माना मन बदल जाता पूरा, उसी अनुसार मेरे कर्म हो जाते, चेहरा और चलन बदल जाते, मेरा व्यवहार आहार विहार बदल जाता, तो ये जो प्रोसेस है अंतर्मुखता, तो मेरी सोच में आत्मिक शक्ति हो, माना सातों एनर्जी हो, जैसे हम बात करते हैं हम वहीं थक गए, मतलब हम विस्तार को सार में, विस्तार माना विस्तार, देव और देव की दुनिया के विस्तार से मन बुद्धि को समेट, शरीर आत्मा बन के, बिंदु आत्मा बन के, और सूक्ष्म शरीर, ये जो मन, मैंने मन सूक्ष्म शरीर, लाइट का शरीर बन गया, मेरे पूरे मन में पूरे शरीर में अब लाइट आ गई, लाइट माना ज्ञान की लाइट आ गई, पवित्रता की लाइट आ गई, शांति की लाइट आ गई, सत्य और निस्वार्थ प्रेम की लाइट आ गई, अतीन्द्रिय सुख की लाइट आ गई, आनंद की लाइट आ गई, और आठों शक्तियों की लाइट आ गई, तो ये लाइट का शरीर, इसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर, तो इस सूक्ष्म बुद्धि इंजन है, दिव्य बुद्धि इंजन है, और सूक्ष्म शरीर के साथ और संस्कार उसकी ड्रेस है, जो चार हमने मर्यादा बताई ना, जो हम सभी जानते हैं चार मर्यादा और चार नियम, ये हमारी ड्रेस बन जाती है सूक्ष्म शरीर की, उस लाइट के ड्रेस की, तो इस ड्रेस के साथ हम सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में पहुंच जाते हैं, उस बाप दादा के सार रूप की गोद में पहुंच जाते हैं, और बाबा से भिन्न भिन्न संबंधों की, अनमोल संबंधों की अनुभूति करते हैं, ज्ञान के एक बिंदु की अनुभूति करते हैं, भिन्न भिन्न संबंधों के साथ हम बाबा के साथ सातों जो गुण हैं, बाबा के आठ शक्तियां, उसको महसूस करते हैं, उस सागर में समा जाते हैं, रूढ़िहान करते हैं, बाबा से क्लियर करना हो क्लियर करते हैं, और उसके बाद फिर हम वहां से भी मन बुद्धि को समेट, सूक्ष्म शरीर को भी समेट, अशरीरी आत्मा बनके परमधाम घर में अशरीर, उसे कहते हैं समेटने की शक्ति, और जब बाबा से हमें करंट आने लगती है तो हमारे अंदर सहन करने की शक्ति आ जाती है, जो शरीर के कर्म भोग हैं, आसपास का वायुमंडल बहुत गर्म ठंडा है, कोई मुझे इंसल्ट करता है, कोई अपमान करता है, मेरे अंदर ऐसे केमिकल पैदा हो जाते हैं, मेरे अंदर इतना रिलैक्सेशन सिस्टम एक्टिव हो जाता है कि मुझे वो फील ही नहीं होता, मेरा आभामंडल बड़ा हो जाता है, और उसमें कोई भी व्यक्ति आता है तो बदल जाता है, जैसे बाबा ने कहा ना पिछली मुरली में कि बाबा डरा देता है, ऐसा 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 भयानक रूप दिखाएगा आपको अगर कोई हार्म करने के हिसाब से आएगा, उसको भयानक रूप दिखा के वो व्यक्ति डर के भाग जाएगा, या उसको फरिश्ता रूप लाइट लाइट दिखा दे, जैसे ब्रह्मा बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा को होता था। तो ऐसी स्थिति, तो अंतर्मुखता एक बहुत गहरा टॉपिक है। तो आत्मिक शक्ति इस तरह से इन आठों शक्तियों को, तो सहनकारी शक्ति, समाने की शक्ति, सामना, और जब सहन कर समा लिया तो हम आगे की प्रॉब्लम्स को सामना करने के तैयार रहते हैं, और फिर सहयोग कर उन्हीं जो आत्माएं तंग कर रही है उन्हीं को फिर हेल्प करना, हमसे मदद मांगती हैं, हमें उनको हेल्प करना, उनकी मदद करना, जिसे कहते हैं परोपकार करना। तो इस सारी जो आठों शक्तियां हैं, जब आठों शक्तियां हमारे अंदर आ जाती हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर ये मेरी सोच में चलता रहे, यही मैं आंखों में देखूं, आठों शक्ति, यही सातों एनर्जी, नाक से भी सातों एनर्जी, नाक मेरी सोच, सूंघने में भी आत्मिक शक्ति हो, मेरे सुनने में भी आत्मिक शक्ति हो, मेरे बोलने में भी आत्मिक शक्ति हो, और खाना खाने में भी आत्मिक शक्ति हो, स्वाद में भी आत्मिक शक्ति हो। तो अंतर्मुखता माना मुझे इन पांचों कर्मेंद्रियों को अंदर यहां स्थित कर देना है, मुझे आत्मा समझ करके हर कर्म करना है, इसे कहेंगे अंतर्मुखता। तो और इसमें रोज दरबार लगानी आवश्यक है। तो रोज सोने से पहले अपने दरबार लगाओ, अपने मन बुद्धि संस्कार से बात करो, अपनी आंखों से बात करो, कानों से बात करो, नाक से बात करो, मुख से बात करो, बाबा ने तो कभी उनका हाथों से बात करो, पैरों से बात करो कि तुम्हारा क्या क्या हाल चल रहा। तो पहला अगर हम ब्रह्मा भाव समान मुझे अव्यक्त अवस्था बनानी है तो इसका प्रैक्टिस करनी आवश्यक है। तो 1932 की जो डायरिया मिली, बाबा ने कैसे बात करते थे, तो बाबा की ये देखिए उसमें दिखने में आया, पढ़ा हमने भी पढ़ा था कि कैसे बाबा उनमें बात करते थे। वो दादी यशु दादी ने उसको, बाबा सिंधी में लिखते थे पर ब्रह्मा दादी ने उसको हिंदी में कन्वर्ट किया हुआ। तो ये पहली पहली बात हमें करनी पड़ेगी, है ना। सच्चा ब्राह्मण बनने की सच्चा ब्राह्मण इसे कहेंगे, है ना, जो अंतर्मुखी रहता है, बाह्यमुखी नहीं। ये टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविजन, व्हाट्सएप, क्या बोलते ट्विटर और सब क्या कहा, इंस्टाग्राम, इन सब बातों से दूर होके, अखबार से दूर होके अंदर जाओ, अंदर देखो, अंदर की दुनिया का समाचार, वो हमें महसूस करना होगा। दूसरी बात, जब ब्रह्मा बाबा को 1934 में साक्षात्कार हुआ, किसका, विनाश का, उनको साक्षात्कार हुआ, उसमें मिसाइल नहीं थे, बम नहीं थे, क्यों, तो प्रैक्टिकल में हम तो रोज विनाश देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, रोज खबरें सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, यूक्रेन में, रशिया में, और भी देशों में क्या क्या चल रहा है, और हमें पता है कि अब क्या सिचुएशन है, एकदम धरती कहां बैठी है, मतलब एकदम कभी भी एक्सप्लोजन हो सकता है, कभी भी विनाश तैयार हो सकता है, तैयारी पूरी है। तब तो बाबा को सर साक्षात्कार हुआ 34 में, और बाबा को साक्षात्कार होते ही बनारस में बाबा ने साक्षात्कार किया, और बाबा ने तभी उनके अंदर बेहद की वैराग्य, दुनिया जाने वाली है, अभी तो पक्का सिद्ध हो गया कि दुनिया जाने वाली ही है, कोई डाउट है क्या इसके बारे में, अभी देयर इज नो डाउट, दुनिया एकदम आग के ढेर पे बैठी हुई है ना, जाने वाली दुनिया है, पक्की जाने वाली है ना। तो हमारे तब तो हमारे अंदर भेद की वैराग्य वृत्ति अभी तक नहीं आई है। बाबा ने, बाबा को संकल्प आते ही बाबा ने क्या किया, बाबा ने को जब साक्षात्कार हुआ, बाबा ने अपने पार्ट साझीदार अंदर बैठे थे उसी बनारस वाले घर में, और बाबा तभी अंदर के उसको कहा कि मुझे और बिजनेस नहीं करना है, तो मेरा आधा हिस्सा मुझे दे दो, तुम ही बिजनेस चलाओ। फिर बाबा को विष्णु का साक्षात्कार हुआ, दो बार विष्णु का साक्षात्कार हुआ, तत्वम, दूसरी बार तत्वम कहा, फिर स्वर्ग का साक्षात्कार हुआ कि स्वर्ग तुम्हें इस दुनिया बनानी है, हमें साक्षात्कार नहीं हुआ है, हमें विष्णु का रूप समझ नहीं आया, हमें भी तो समझ आ गया विष्णु क्या है, विष्णु माना जिसके अंदर, जिसकी प्रवृत्ति में विष का एक अणु भी ना हो, जिसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अंश भी ना हो, ना बुद्धि में, ना मन में, ना संस्कारों में। जैसे ब्रह्मा बाबा बना, मुझे भी तो ऐसे ही बनना है, उनके अंदर ना बुद्धि में, ना मन में, संस्कार में कुछ भी नहीं रहा, किसी विकार का अंश भी नहीं रहा, तो बाबा विष्णु की स्टेज में गए ना यहां से, तो मुझे भी तो ऐसा बनना है। और स्वर्ग की दुनिया, स्वर्ग माना क्या, स्व माना आत्मा, अर्ग माना दैवी गुण, तो आत्मिक स्थिति में भर के मुझे 36 दैवी गुण धारण कर लेना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण यहां बनना है ना, संपूर्ण निर्विकारी यहां बनना है ना। तो ऐसी बेहद की वैराग्यवृत्ति बाबा के अंदर आ गई। और जब 1936 में बॉम्बे में जब शिव बाबा की पधरामणी हुई ब्रह्मा बाबा के तन में, जब बाबा गीता का ज्ञान सुना रहे थे, गीता सुना रहे थे, सभा में बैठे थे, अचानक बाबा को फिर बाबा अकेले कमरे में चले गए और तब बाबा को वहां पर शिव बाबा की पधरामणि हुई और बाबा ने शिव बाबा के अंतन में आ गए, जिसे ब्रजेंद्र दादी ने साक्षात्कार में देखा, सामने देखा। तो हमारे अंदर नहीं है, हमें महसूस नहीं हुआ अभी तक कि शिव बाबा की पधरामणि हो गई है। क्या हमारे अंदर शिव बाबा की पधरामणि अभी तक नहीं हुई है? नहीं हुई है? क्या हमने अपने दिल को इतना सच्चा साफ बनाया कि शिव बाबा उसमें आ जाए, ब्रह्मा बाबा उसमें आ जाए? अभी तक इस दिल में, अगर दिल माना चेतना, कॉन्शियसनेस, जैसे होता है ना बुलजाई होती है ना, जो शूटिंग रेंज में होता है ना बना हुआ, एक बीच में होल, बीच में एक बिंदु होता है, पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल, तो पहला वाला सर्कल उसको दिल कहते हैं, चेतना कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, दिल कहते हैं। तो मेरे दिल में कौन कौन है देखो, चेक कर लो, क्या देहभान है अभी तक, देह अभिमान है, देह के संबंध संपर्क का भान है, संबंध संपर्क याद रहते हैं बुद्धि में, देह अभिमान के संबंध संपर्क है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, संपर्क, दोस्त वगैरह, जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, कुछ भी हैं, हर समय बुद्धि में मेरे दिल में वही भरे रहते हैं। अगर वही भरे रहते हैं तो फिर तो बाबा इस दिल में आ ही नहीं सकता कभी भी, ना आ सकता है? नहीं आ सकता है। देह अभिमान अगर दिल में आ गया तो बाबा अंदर आ ही नहीं सकता है ना। तो शिव बाबा दिल में मेरे आके बैठे, सच्ची दिल साफ दिल होगी तब तो बाबा अंदर आएगा, तो कैसे आएगा? मैंने और लोगों को बिठा के रखा अपने दिल में तो कैसे बाबा अंदर आएगा? ब्रह्मा बाबा ने सबको निकाल दिया था, जब बेहद की वैराग्य वृत्ति आई तो ब्रह्मा बाबा ने सबको निकाल दिया था, अनासक्त वृत्ति और उपराम वृत्ति साथ में आई थी, बाबा एकांतवासी बन गए थे, खोए खोए रहते थे हमेशा। दादी बताती है बाबा एकदम खोए खोए रहते थे, किसी से बात ही नहीं करते थे ज्यादा, बस एकांत में बैठे। कश्मीर चले गए, बनारस चले गए, एक बार तो वहां भी कहीं और हिमालय की तरफ कहीं कहां गए थे बाबा। तो बाबा एकदम एकांत में बैठे, छत पे चले जाते थे, एकांत में समुद्र किनारे चले जाते, अकेले ही घंटों घंटों बाबा बैठे रहते थे। अंदर से खींच रही थी वो एनर्जी, कोई चीज बाबा को खींचती नहीं थी। तो हमारी ऐसी स्थिति बनी है, हम ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनना चाहते हैं, हम लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना चाहते हैं, तो क्या हमारी ऐसी स्थिति बनी है? अपने आप से चेक करें, जो कल बाबा ने कहा, बार बार चेक करने के लिए कहा ना, तो हम ऐसे बने हैं क्या? नहीं तो अभी से बनना शुरू करें। तो ब्रह्मा बाप समान बनने के लिए बहुत बहुत आवश्यक है कि हमारी स्थिति बने, तो हम अंतर्मुखी बने, भेद की वैराग्य वृत्ति धारण करें, जब तब जाके क्या होगा, बेहद की वैराग्य में, बेहद माना बेहद की वैराग माना, ना वैर ना राग, ना किसी से दुश्मनी, ना किसी से अटैचमेंट, किसी भी किसी से, पूरी दुनिया में किसी से भी वैर नहीं, किसी से भी राग भी नहीं, लौकी को चाहे लौकी को, किसी में भी नहीं होना चाहिए, रिगार्ड सबके लिए हो, किंतु राग और वैर किसी से भी नहीं। जब ऐसी स्थिति होगी तो अनासक्त वृत्ति पैदा होगी, आसक्ति खा लूं, ये खा लूं, ये देख लूं, वहां घूमने चला जाऊं, इधर खा, इधर करूं, इधर सब अनासक्त हो जाएगा, और फिर अनासक्त होगी तो उपराम, तब ऊपर बुद्धि जाएगी ना, ऊपर बुद्धि जाएगी तो बाबा आएगा ना। नहीं, जब मेरी बुद्धि उपराम होगी, मन उपराम होगा, तभी तो बाबा अंदर आएगा, कैसे आएगा नहीं तो? मेरी बुद्धि तो यहीं फंसी हुई है, मन तो यहीं फंसा हुआ है, तो बाबा कहां से आएगा, है ना? तो देह, देहभान, देह अभिमान, देह अभिमान के संबंध संपर्क, देह अभिमान के पदार्थ, मकान में, जायदाद में, पैसे में बुद्धि लगी है, धंधे में बुद्धि लगी हुई, सारा दिन उसी के बारे सोचते रहते हैं, कैसे बिजनेस बढ़ा लूं, कैसे धंधा बढ़ा लूं, कैसे ये बढ़ा लूं, ये बढ़ा लूं, बाबा बुद्धि में नहीं आए। देह अभिमान जनित स्वभाव संस्कार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, पांच विकार, संस्कार, आलस्य, अलबेलापन, दोष दर्शन, किसी से बदला लेने की भावना, शक अनुमान, चिंता भय, जल्दीबाजी, प्रेशर्स, टाइम का प्रेशर, काम का प्रेशर, परफेक्शन का प्रेशर, इच्छाओं का प्रेशर, कंपटीशन, कंपैरिजन, ईर्ष्या, द्वेष। एक मुझे बहुत सुंदर, मैंने एक बात पढ़ने में आई मेरे को थोड़े दिन पहले, कृष्ण है ना, कृष्ण, कृष्ण 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 का मतलब क्या है? एक होता कृष धातु होती है, एक होता कृष शा षटकोण वाला, उसका मतलब है कृष माना जिसमें ईर्ष्या द्वेष ना, जिसमें ईर्ष्या द्वेष का अंश भी ना हो, कंपटीशन कंपैरिजन का अंश भी ना हो, प्यार ही प्यार बेशुमार, इसलिए कृष्ण को सब प्यार करते हैं। तो मुझे ऐसा बनना है कि मुझे किसी के प्रति भी ना ईर्ष्या हो, ना द्वेष हो, ना कंपटीशन और कंपैरिजन हो, बस बाबा और मैं खोया हुआ, उसी में खोया हुआ, उसी में खोई हुई मैं आत्मा, उसी के प्यार में खोई हुई लवलीन अवस्था। तो वो है श्री कृष्ण बनने की अवस्था जो ब्रह्मा बाबा की थी। ब्रह्मा बाबा किसी से, ब्रह्मा बाबा को कोई इंसल्ट करे, गाली दे, कुछ अपमान करे, बाबा के लिए कुछ भी बोले, बाबा को कोई उसके प्रति, सबके प्रति प्यार बराबर भाव था, प्यार प्यार ही प्यार। बाबा ने कभी भी, एक बाबा की बात है जब दादी बताती थी कि अपनी दादी थी ना जो निर्मल शांता दादी, कलकत्ता में रहती थी, तो एक बार बाबा ने बाबा के बारे में विश्वामित्र अखबार में छपा कि बाबा तो किसी ने बदनाम करने के हिसाब से कि बाबा की पहले साइकिल की दुकान थी, साइकिल का टायर, साइकिल के वो लगाते पंचर लगाने वाले की दुकान थी। तो बाबा ने, दादी ने बाबा को लिखा कि बाबा विश्वामित्र अखबार में ये छपा है, मैं उसके खिलाफ केस करूंगी। तो बाबा ने कहा बच्चे कभी बाप बच्चों पे केस करता है क्या? वो भी तो बच्चा है, वो भी तो मेरा बच्चा है विश्वामित्र अखबार वाला। तो ये बाबा की वृत्ति थी, किसी के प्रति जरा भी कुछ भी, कोई कितना भी बुरा करे, बाबा ने सदा ही कभी नेगेटिव नहीं किया किसी। ऐसी हमारी दृष्टि वृत्ति है क्या? तो ये जब सब चीज हमारी दिल से निकलेगी ना, तब बाबा हमारे अंदर आएगा, तब बाबा की पधरामणी मेरे अंदर होगी, है ना? शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा तब मेरे दिल में आके समाएगा, तब सच्चे दिल। साफ दिल माना क्या? जिस दिल में एक बाबा के अलावा कोई दूसरा ना हो, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, जिस दिल में बाबा की मुरली के अलावा कोई दूसरा ना हो, उसके साफ दिल, सच्चे दिल में जिसमें बाबा के अलावा दूसरा कोई ना हो, और साफ दिल में जिस दिल में मुरली के अलावा कुछ और ना हो, श्रीमत के अलावा मनमत परमत का जरा अंश भी ना हो, वो दिल सच्चे दिल साफ दिल है, राइट? तो ये है हमारे अंदर, तब जाकर के अपना तन, पुराना तन, जब बाबा अंदर आ गया ना, तो पुराना तन, पुराना मन, पुराना धन और पुराना संबंध, तब बाबा को हम समर्पण कर सकते हैं। जब तक दिल में मेरे सच्चे दिल साफ दिल नहीं, तब तक हम समर्पण नहीं कर सकते। और जब चारों चीज हम समर्पण कर देते तो क्या होता है? तब मेरा योग लगना शुरू होता है। उससे पहले योग लगता नहीं है। हम भले थोड़ी देर के लिए विजुलाइज कर लेते हैं, मैं ऐसे आत्मा हूं, मैं ऐसे परम धाम में जा रहा हूं, ऑटोमेटिक सहज योग नहीं लगता है, स्वतः योगी नहीं बनते हैं, स्नेह संपन्न योगी नहीं बनते हैं। तो अगर स्नेह संपन्न योगी बनना है, सहज योगी स्वतः योगी बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? अंतर्मुखी बनना पड़ेगा, बेहद की वैराग्य वृत्ति धारण करनी पड़ेगी, अनासक्त वृत्ति, उपराम वृत्ति धारण करनी पड़ेगी, और जब उपराम वृत्ति होगी तो बाबा अंदर आएगा, दिल में आएगा, और बाबा की श्रीमत अंदर आएगी, तब जो है हमसे ऑटोमेटिक तन, पुराना तन बाबा को समर्पण, मन बाबा को समर्पण, धन बाबा को समर्पण, और संबंध बाबा को समर्पण। तब ये जब भी तन को बाबा के मन समझ के यूज करेंगे, मन को भी संकल्प करना तो बाबा के मन समझ के, बाबा देखना है पहले, बाबा से पूछो, बाबा ये देखूं, ये सुनना है, ये बाबा ये सुना रहा है तो सुनूं, बाबा ये बोलूं, बाबा ये खाऊं, कुछ भी करने से, छोटा बच्चा जिसे पूछता है, मां से पूछता है ना, ऐसी हमारी स्थिति हो जानी चाहिए। जब मैं बड़ी दादी को देखा, छोटी छोटी बात में बाबा से पूछती थी, बाबा से डायरेक्शन, गुलजारदारी के द्वारा डायरेक्शन मंगाते थे, यज्ञ में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, बाबा से डायरेक्शन मंगाते थे, छोटे छोटे संदेश बाबा, ब्रह्मा बाबा उसके बेस्ट एग्जाम्पल थे, छोटा सा भी कुछ हुआ यज्ञ में, कुछ बहन को भाई को कुछ हुआ, बाबा से डायरेक्शन, रास्ते में फंस गए, फॉगी आ गई, बाबा से पूछा, संदेश को भेजा, बाबा से पूछ के आओ क्या करना, कुछ भी होता था बाबा से डायरेक्शन। तो तन भी बाबा से हर बात यूज करनी, मन भी बाबा में संकल्प आए तो पहले बाबा से पूछो, बाबा ये संकल्प आ रहा है करना है, ऐसी भावना पैदा हो रही है ये करना है, बाबा की अमानत है। धन भी बाबा से पूछ के खर्च करना है, ये धन मेरा नहीं है, बाबा का धन है, संबंध भी बाबा के हैं, जब आपका लौकिक पुत्र है, लौकिक पुत्री है, पति है, पत्नी है, बाबा के हैं, मेरे नहीं, उसको अपनी शब्द मत यूज करो, मेरी युगल है, मेरा युगल है, नहीं, बाबा का बच्चा है, बाबा का बेटा है, मेरा बेटा नहीं, बाबा का है। जब ऐसे समझ के यूज करें और बाबा से डायरेक्शन लेके यूज करें, जैसे ब्रह्मा बाबा की एग्जाम्पल थी कि ब्रह्मा बाबा के लौकिक पुत्र ने जब बॉम्बे गए तो उन्होंने उसको क्या किया, कहा नहीं तुम्हें जाना तो जाओ बस, तो ब्रह्मा बाबा ने जैसे इसकी जैसे परफेक्ट एग्जाम्पल, फॉलो फादर का मतलब यही है, तो ब्रह्मा बाबा जैसा फॉलो फादर करना जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, मुझे वैसा करना पड़ेगा अगर मुझे अव्यक्त अवस्था बनानी है तो। और तब सहज योग बना, मेरा स्नेह संबंध और प्राप्ति तीनों ही बाबा से होगी। और जब सर्व स्नेह सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति हम बाबा से करने लगे, देहधारियों से नहीं, तब जाकर के मेरा स्वतः योग हो जाएगा। और जब उसके प्यार में खोए रहने लगे तो स्नेह संबंध सर्व संबंध उससे बना लेंगे तो फिर हमारा आशिक माशुक वाला योग हो जाएगा। और जब आशिक माशुक बनते हैं ना तो पता क्या होता है, दुनिया क्या करती है, बहुत तंग करती है ना, नहीं बनती है तो फिर सहन करने, फिर जब हम हमारी फिर हम क्या होगा, ऑटोमेटिक हमारे अंदर हमारा विवेक जागृत हो जाएगा, सत्य को परखने की शक्ति जागृत हो जाएगी, निर्णय शक्ति दिव्य हो जाएगी और विस्तार को सार मिलाने शक्ति आ जाएगी। हम सूक्ष्म वतन में ही बाबा की गोद में समाये रहेंगे, हमारी मन बुद्धि यहां होगी नहीं, मन बुद्धि से हम यहां होंगे ही नहीं। होता है खोए हुए लोग होते हैं ना, कई लोग खोए हुए होते हैं, हम मन बुद्धि से बाबा के पास है। और ऐसा नहीं समझे कि बाबा के पास है तो हम यहां पर अपनी गलतियां होंगी, नहीं। अभी मुरली थी संडे की मुरली, कि जितना ये हम बाबा से ऐसे कंबाइंड रहेंगे हर काम करते भी फ्री रहेंगे, है ना। जैसे दादियों को देखा, दादी जानकी को जी को देखा, दादी जानकी कभी नहीं कहेगी मैं बिजी हूं, नहीं मैं बहुत इजी हूं। मुझे भी याद है पहले मैं हमेशा एक ही शब्द यूज करता था, कोई बात होती ना मैं बहुत बिजी हूं, कोई मुझसे कहता मुझे मिलना है बहुत बिजी हूं टाइम नहीं है। और अभी मैं जैसे योग हम अच्छा करते जा रहे, योग अच्छा लगता है, बाबा के साथ हम रहने लगे तो अब लगता है इजी है, कोई मिलता है रास्ते मिलता है उससे बात कर लेते हैं, कोई कुछ पूछता है बता देते हैं, अभी हमको इजी लगता है, पहले हमेशा बिजी महसूस होता था। तो ये स्थिति आपकी बनती जाएगी, सिद्धि स्वरूप बनते जाएंगे, साथ साथ फ्री भी होते जाएंगे, जिम्मेवारियां बढ़ते जाएंगे, फ्री होते जाएंगे। ऐसा नहीं कि हमारी जिम्मेवारी, जब हम आए थे यज्ञ में 27 साल पहले 28 साल पहले तब हमारे पास कोई जिम्मेवारी नहीं थी ज्यादा, अभी बहुत जिम्मेवारी है कि फिर भी फ्री है। कहने को बहुत हमेशा खाली खाली लगता है, बहुत टाइम है खाली खाली है। तो जितना बाबा के साथ बिजी क्या है, मेरे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी बहुत, थॉट स्पीड बहुत फास्ट है तो बिजी है, और मेरी फ्रीक्वेंसी पहले 30 थी 40 थी, अभी 4-5-6 रहती है तो विचार ज्यादा चलते, ABCD चलता है, ई और एफ तो बहुत ही कम चलता है, तो 4-5 विचार चलते हैं, इंपॉर्टेंट विचार वही है बस, तो इजी रहते हैं। 5-6 विचार तो आता ही नहीं है, बहुत कम आता है, कभी कभी आता होगा, तो आप भी इजी हो जाओगे। ABCD में चार ही विचार हुए ना, आत्मा बाबा कनेक्शन और ड्रामा, और ड्रामा में क्या आता है फुल स्टॉप, बिंदी लगाई, बिंदी बन के बिंदी बाप से कंबाइंड हुए, हर कर्म करते बिंदी बाप से कंबाइंड रहे, और पता है भविष्य क्या होने वाला, फरिश्ता सुदेवता बन के बाबा के साथ जाना ही है, बाबा के साथ जाएंगे, साथी बन के जाएंगे, बराती बन के नहीं जाएंगे, और बाबा के साथ वापिस घर में राजधानी में आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे राजधानी में, आएंगे नहीं आएंगे, साथ में क्या पीछे पीछे साथ में, और जाएंगे कैसे, साथ में जाएंगे कि पीछे पीछे जाएंगे, पर साथ जाने के लिए समान बनना पड़ेगा ना ब्रह्मा बाबा के, जैसे ब्रह्मा बाबा ने बने वैसे ही मुझे भी तो बनना पड़ेगा, नहीं बनना पड़ेगा तो सहन करना पड़ेगा ना। जब तो जब ऊपर जब हमारी बुद्धि रहेगी, मन बुद्धि ऊपर रहेगी, बाबा के पास सूक्ष्म वतन में रहेगी, सूक्ष्म शरीर माना हमारा सूक्ष्म शरीर माना हमारा मन, स्वच्छ मन, बुद्धि क्लीन और क्लियर और मन स्वच्छ, तो ये सूक्ष्म शरीर है बाबा के पास रहेगा, और फिर वहां से बाबा से हम एक एक संबंध की गहराई में अनुभव करते रहेंगे, अनुभव की अथॉरिटी बन जाएंगे, और फिर बाबा के साथ वहां से भी अश्री बन के परमधाम गर्भ अश्री बाप से कंबाइन होंगे तो करंट आएगी, तो सहन शक्ति आएगी, समानिक शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति आएगी। तो ये 6 शक्ति से हमारा चित्त बनता है, सबकॉन्शियस माइंड बनता है। मुझे बहुत सुंदर एक अनुभूति हुई आज सुबह, हमारा सबकॉन्शियस माइंड चित्त कहते, चित्त हमारा जो चित्त में होता है वो चिंतन में चलता है, चेतन मन में वही चिंतन चलता है। अगर मेरा चित्त अशांत रहता है, चंचल रहता है, बेचैन रहता है, अगर मेरा दिल में सच्चे नहीं, सत्य सच्चाई नहीं है, सफाई नहीं है, सच्चा साफ नहीं है, दिल में कोई देह भान है, देह अभिमान है, कोई देह के संबंध संपर्क फंसा हुआ है, देह के पदार्थ मेरी बुद्धि में दिल में फंसे हुए, कोई मेरे अंदर क्रोध आता है, लोभ आता है, किसी से मोह आता है, किसी के प्रति अहंकार है किसी बात का, चिंता है, भय है मेरे दिल में, तो क्या होता है, और मैं दुनिया की मनमत, ये क्या कहता है, वो क्या कहता है, वो भाई क्या कहता है, वो बहन क्या कहती है, अखबार वाले क्या कहते हैं, कोई रामदेव जी क्या कहते हैं, कुछ और कोई और क्या बोलते हैं योग के बारे में, योगानंद जी क्या कहते हैं, विपासना वाले क्या कहते हैं, रजनीश क्या कहते हैं, मनमत परमत भरी हुई है। तो मेरा दिल अगर झूठा है, साफ नहीं है, तो मेरा विवेक जागृत नहीं होता है, निर्णय शक्ति भ्रष्ट हो जाती है और चित्त अशांत चंचल बेचैन हो जाता है। अगर दिल सच्चा और साफ है तो विवेक जागृत हो जाता है, सत्य को प्रज्ञा शक्ति जागृत होती है, निर्णय शक्ति दिव्य हो जाती है और चित्त मना विस्तार को सार मिलाने शक्ति, एक सेकंड में विस्तार सार में चला जाता है, बाबा की गोद में पहुंच जाते हैं और वहां से भी मन बुद्धि को समेट के परमधाम घर में अश्री बन के पहुंच जाते हैं, करंट आने लगती है और सहन होने लगता है, समाना होने लगता है, सामना होता जाता है और सहयोग करते जाते सबको, तो चित्त मेरा शांत एकाग्र आनंद में होता जाता है। तो चिंतन मेरा कैसा होता है, चित्त मेरा शांत एकाग्र आनंद में, तो चिंतन मेरा कैसा होगा, कैसा होगा, चित्त में मेरे चिंतन में, मेरे चेतन मन में, कॉन्शियस माइंड में कौन सी फाइलें खुलनी शुरू हो जाती है, मेरे चेतन मन में फाइलें कौन सी खुलती हैं, पिछले कल्प वाली सच्चे ब्राह्मण स्वरूप की, फरिश्ते स्वरूप की, देवता स्वरूप की फाइलें खुलने लगती है। तो जैसा चित्त वैसा चिंतन, तो जितना सूक्ष्मता में रहोगे तो आपका चित्त क्या होता जाएगा, सबकॉन्शियस माइंड शांत होता जाएगा, एकाग्र आनंदमय होता जाएगा, और जितना परम धाम में रहोगे, बिंदी बन के अश्रीर बन के परम धाम घर में अश्री बाप से कंबाइंड रहेंगे, निराकारी आत्मा बन के निराकार बाप से निराकार वतन में कंबाइंड रहेंगे, उतना मेरा अनकॉन्शियस माइंड खत्म होता जाएगा, अनकॉन्शियस माइंड में ही मेरे 63 जन्मों के पापकर्म भरे हुए, मेरे पापकर्म भस्म होते जाएंगे। यही फर्क है व्यक्त अवस्था और अव्यक्त अवस्था में। अव्यक्त बनने के लिए मुझे जरूरी है कि मेरे पिछले जन्मों के पापकर्म भस्म हो जाएं, तभी मैं अव्यक्त बन सकता हूं, तभी मेरी अव्यक्त अवस्था आ सकती है, जो ब्रह्मा बाबा ने 33 साल में करके दिखाया। अंदर ही अंदर इतना गुप्त पुरुषार्थ किया, मालिक बन के अपने पूरे 73 जन्मों के पापकर्मों को भस्म कर दिया, किसी को पता भी नहीं लगा बाबा अंदर क्या कर रहा है। ऐसा ही हमको गुप्त पुरुषार्थ करना है, अंदर ही अंदर सारा गुप्त है, आत्मा भी गुप्त, प्राप्ति भी गुप्त, बाप भी गुप्त, प्राप्ति भी गुप्त, योग भी गुप्त, सब कुछ गुप्त है हमारा, बस चेहरे पे चमक आ जाती है, हमेशा मुस्कुराहट रहती है। तो जब ऐसी आठों शक्तियां जब हमारे अंदर आ जाती है तो हमारा चित्त शांत एकाग्र आनंद में हो गया, और फिर ऑटोमेटिक क्या होता है, फिर ये ऑटोमेटिक बाप से एक संबंध की अनुभूति होने लगी। चिंतन, चिंतन में क्या है, मैंने बताया ना मन में चार बातें, क्या क्या चीजें मन में, क्या क्या, टीम, थॉट्स, संकल्प, भावना, वृत्ति और स्मृति। तो स्मृति स्वरूप बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो संकल्प, जैसे बाबा से, बाबा मेरी मां है, ये संकल्प आया, या मुरली है, मुरली का चिंतन चलना शुरू हो जाता है, दुनिया की बातें चिंतन में नहीं आती हैं, बाबा ने क्या कहा वो चिंतन चलता है, कल की बाबा ने मुरली का परफेक्ट बनना है, सारे परफेक्ट डिफेक्ट निकाल देने हैं, है ना, साइलेंस पावर क्या होती है उसका, कल का जो वरदान था आज का वरदान था, बुद्धि में घूमता है, स्लोगन घूमता है, अव्यक्त इशारा घूमता है, सोमान घूमता है बुद्धि में, ये दुनिया की बातें घूमती हैं, क्योंकि दिल में दिल सच्ची साफ तो विवेक जागृत, निर्णय शक्ति दिव्य और चित्त शांत एकाग्रंद में, तो चेतन मन में मुरली घूमती है, बाबा की बातें घूमती हैं, बाबा के संबंध घूमते हैं, बाबा मेरी मां, शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा मुझे क्या करता है, दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि दे देता है, प्रदान, पहला प्रदान ये दिव्य दृष्टि माना, मैं दिव्य दृष्टि माना, जैसे ब्राह्मण जन्म मिला मुझे दिव्य दृष्टि का वरदान मिल गया माना, अब मैं अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप को इमर्ज कर सकता हूं अपने अंदर, परम धाम में कैसा था और सत्युग में कैसा, देवी देवता आदि देवी देवता स्वरूप मेरा कैसा था, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमोधम, उस स्वरूप को मैं अपने अंदर इमर्ज कर सकता हूं और सामने वाले का भी वही स्वरूप इमर्ज कर सकता हूं, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप आदि देवी देवता स्वरूप, उसमें रह के व्यवहार करते हैं तो पवित्रता हो गई। तो ऐसे हम व्यवहार, तो इसी संकल्पों में जब करता हूं तो यही मेरी भावना बन जाती है और भावना के वाइब्रेशन बाबा तक जाते हैं, उस पवित्रता के वाइब्रेशन बाबा तक, बाबा के वाइब्रेशन मेरे पास आते हैं, कैचिंग पावर, टचिंग पावर बढ़ती है। मेरी वृत्ति कैसी बन जाती है? पवित्र वृत्ति बन जाती है, पवित्र दृष्टि बन जाती है, पवित्र वायुमंडल बन जाता है। जो भी अगर पतित भी कोई वायुमंडल में आएगा, वो भी जैसे उसके पवित्र संकल्प खत्म हो जाते हैं, भावनाएं खत्म हो जाती है उस वायुमंडल में। और वायुमंडल को जितना योग करो उतना बढ़ता जाए, जितना करो योग करो उतना बढ़ता जाएगा। तो ऐसे वायुमंडल बना तो अंदर रिकॉर्ड हो गया, पवित्रता मेरी पवित्रता का स्मृति स्वरूप बन गया, उस बाबा के मां के संबंध का मैं स्मृति स्वरूप बन गया कि बाबा ने मुझे मां के रूप में दिव्य दृष्टि दी पहले, फिर पवित्रता का मैंने शांति का किया, शांति माना क्या, पास्ट को बिंदु लगा के और बिंदी बन के उस अस्वस्थता भाव से कंबाइंड होकर हर कर्म करना है। तो मैंने इस संकल्प को किया, उसी भावना से किया, तो भावना से वृत्ति बनी, वृत्ति से वायुमंडल बना, वायुमंडल से दृष्टि बनी, दृष्टि से अंदर रिकॉर्ड शांति रिकॉर्ड हो गई। ऐसे सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम का रिकॉर्ड किया, अतीन्द्रिय सुख को रिकॉर्ड किया, आनंद को रिकॉर्ड किया, आठों शक्तियों को रिकॉर्ड किया, है ना, अंदर रिकॉर्डिंग हो गई। तो स्मृति स्वरूप बनते जाते हैं, मां का संबंध, बाप का संबंध क्या, और जैसे जैसे हम इस संबंध को अनुभूति करते हैं तो दिव्य दृष्टि को यूज करते करते क्या होता है, दिव्य बुद्धि क्या बन जाती है, एक क्या बन, लिफ्ट बनती जाती है, दिव्य बुद्धि एक लिफ्ट बनती जाती है। और दिव्य बुद्धि में मैं आत्मा, मुझे आत्मा को इस सूक्ष्म शरीर के साथ एक सेकंड में मुझे सूक्ष्मतम पहुंचा देती है, बाबा की गोद में, परम धाम में पहुंचा देती है और सुख धाम में पहुंचा दे सकती है। तो दिव्य दृष्टि जैसे एक्टिव हो जाती है, वो लिफ्ट एकदम, बटन दबाओ सूक्ष्मतम में पहुंचे, बटन दबाओ परम धाम में पहुंचे, बटन दबाओ सुख धाम में पहुंच गए, वापिस आ जाओ। तो ऐसे ही बन जाता है। फिर बाप के रूप में बाबा त्रिनेत्र, किस ज्ञान का तीसरा नेत्र दे देता है, तो बाबा के पास पहुंच गए, बाबा की गोद में गए, तो ज्ञान का सागर, उस सागर में समा जाओ, पवित्रता के सागर में समा जाओ, शांति के सागर में समा जाओ, प्रेम के सागर में समा जाओ। तो ये भावना है ना, भावना के रूप में कन्वर्ट हुआ, वृत्ति के रूप में कन्वर्ट हुआ, और वृत्ति से दृष्टि बनी, और दृष्टि से वायुमंडल और रिकॉर्ड हो गया। ये तरीका स्मृति स्वरूप बनने का, एक एक ज्ञान के पॉइंट का, एक एक संबंध का, मां का, बाप का, टीचर माना सौदर्शन चक्रधारी, सतगुरु माना साकारी आकारी निराकारी की ड्रिल, बंधु माना सारा बोझ बाप को दे दो, लौकिक अलौकिक बोझ बाप को दे, हल्के हो जाओ, डबल लाइट हो जाओ। सखा माना मन में जो कुछ गलत काम हो गया हो, पहले कभी पुरानी पुरानी बात को बार बार हर्ट करती है, बाबा को सब बता दो। साजन के माना 36 दैवी गुणों को एक एक अंदर से बाबा सजा रहा है, एक एक गुण की गहराई में चले जाओ, संकल्प में आएगा, फिर भावना में, फिर वृत्ति में, फिर दृष्टि में, वायुमंडल और अंदर रिकॉर्डिंग। तो सातों में 36 गुण रिकॉर्ड हो गए, है ना। सज्जन के रूप में छोटी छोटी कमियां हैं, बाबा निकाल रहा है, फिर तन मन धन संबंध और समर्पण, सब समर्पण कर दिया बाबा को, बलिहार कर गया, तो वारिस बन गए, बाबा क्या बन गया, हमारा बच्चा बन गया। तो बाबा को हमने दिया, तो बाबा फिर हमें अपना बच्चा बना लेता है, फिर बाबा कहता है जो मेरा तुम्हारा सब कुछ मेरा और मेरा सब कुछ तुम्हारा। अब बाबा ने मुरली बताया था ना, मेरा सब कुछ क्या है, स्वर्ग। तो तुम्हें यहां बैठे स्वर्ग के सीन सिंधे दिखाई देने शुरू हो जाते। तो ऐसी स्थिति हमारी, तो जितना हम ये करते जाएं करते जाएं करते स्मृति स्वरूप बनते जाएंगे, और स्मृति स्वरूप बनते जाएंगे तो क्या होगा, रिकॉर्डिंग होती जाएगी अंदर, सॉफ्ट कॉपी आत्मा में, हार्ड कॉपी ब्रेन में। तो क्या होगा, जो स्मृति अंदर रिकॉर्ड हो गई फिर वही दिखाई देगा इन आंखों से, वही सुनाई देगा, भले दुनिया वाले कुछ मर्जी बोले, मुझे सुनाई वही देगा। मेरा चैनल ही बदल गया ना, तो मुझे विविध भारती, तो विविध भारती सुनाई देगी ना, तो मुझे हर चीज मेरी बदल गई, मेरी दृष्टि, वृत्ति, नैन, जैसे ब्रह्मा बाबा के नैन चैन बदल गए थे, है ना, चलते फिरते फरिश्ता स्थिति, तरसा जन के पाप कर्म अंदर अंदर खत्म हो गए, ज्वालामुखी शक्तिशाली योग अग्नि त्याग कि ना, मैं फिर इससे बेफिक्र हो गए हम, सहनशीलता आई, तो बाबा का साथ हर समय महसूस होता है, तो सहन बेफिक्र बादशाह बन गए, और कर्म योगी माना हर कर्म में फिर बाबा की याद रहने लगती, निरंतर योगी बन जाते। तो जहां बाबा हमेशा साथ रहता तो मैंपन मेरापन खत्म हो जाता, निराकारी आत्मा बन के निराकारी बाप से कंबाइंड रहते, ज्वालामुखी योग अग्नि जागृत होती, और 63 जन्मों के पाप कर्म भस्म होते रहते अपने आप ही, और निर्विकारी अवस्था आती जाती, और हम ज्यादा समय अभी परम धाम घर में बीज रूप बाप से कंबाइंड होकर कल्प पूरे कल्प शुद्ध सकाश देते जाते हैं, और देते देते हम क्या बन जाते हैं, बाबा के साथ से करावन हार की स्मृति सदा बनी रहती है, कि बाबा मेरे साथ करामनहार है, तो हम निरंकारी बन जाते हैं, तो स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। तो ये प्रैक्टिकल एक स्थिति हमारी ऐसी बनती जाती, तो हम एकदम जैसे ब्रह्मा बाबा अंदर अंदर कर्मातीत बनता गया, है ना। और फिर क्या हुआ, मतलब फिर तीनों लोग जैसे हमको एक कमरा, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना हो गया, एक कमरे से यहां से निकले सूक्ष्मवतन में गए, सूक्ष्मवतन से परमधाम में गए, परमधाम से वापस सूक्ष्मवतन में आए। ज्यादा साकारी आकारी, साकारी साकारी आकारी निराकारी, आकारी निराकारी, निराकारी आकारी, आकारी साकारी, आकारी निराकारी। जैसे मम्मा बोलती थी, मम्मा कहती थी मैं ज्यादा समय सूक्ष्मवतन में ही रहती हूं, जब मुझे बोलना होता तभी मैं नीचे आती हूं। ऐसी स्थिति हमारी ऑटोमेटिक बन जाएगी। तो ये प्रैक्टिकल स्थिति हमको बनानी है तो क्या करना पड़ेगा, मैं दोबारा रिवाइज कर लेता हूं। मनुष्य प्लस अंतर्मुखता प्लस क्या, भेद की वैराग्य वृत्ति प्लस तन मन धन संबंध का समर्पण इज इक्वल टू सच्चा ब्राह्मण, ठीक है। और सच्चा ब्राह्मण प्लस सहनशीलता, सर्व संबंध से बाप को याद करना, सहज योगी स्वतः योगी स्नेह संपन्न योगी, तो क्या बन गए हम, तो सहन करना, समाना करना, सामना सहयोग करना आ जाता, सहनशीलता आ जाती है। और जब बाबा के साथ का हमेशा अनुभव होता रहता तो बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। परमात्म चिंतन, मुरली का सारा दिन मनन चिंतन मंथन चलता रहता है, बाबा के भिन्न भिन्न गुणों का संबंधों का चिंतन चलता रहता है, तो बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। और फिर कर्मयोगी स्वनिरंतर योगी बन जाते हैं। जब बाबा ऐसे हमेशा कंबाइंड रहने लगते हैं बाबा के साथ, तो हम मैंपन मेरेपन का त्याग हो जाता है। और सबसे बड़ा त्याग यही, मैंपन मेरेपन का त्याग खत्म हुआ तो देवान खत्म हुआ, देवान खत्म निराकारी बने, निराकारी बनकर निराकार बाप से कंबाइंड होते तो ज्वालामुखी योग अग्नि जागृत हो जाती, जिससे हमारे तीसरे जन्मों के पाप, सारे पाप कर्म, पिछले जन्मों के पाप कर्म भस्म हो जाते, हम संपूर्ण निर्विकारी बनते। और फिर तो त्याग तपस्या सेवा, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, तो बीज रूप बाप के साथ बीज रूप अवस्था में परम धाम में बाबा से कंबाइंड रह करके हम चलते फिरते उठते बैठते वो स्थिति बन जाती। सारा टाइम कलर विश्व सकाश देते रहते, मनसा सेवा, इसे कहते हैं मनसा सेवा, यथार्थ मनसा सेवा, बेहद की निस्वार्थ भाव की सेवा, जिससे बेहद की दुआएं मिलती हैं। और फिर ये आत्मा क्या बन जाती है, स्मृति स्वरूप बन जाती है, निरहंकारी बनती है तो स्मृति स्वरूप। और मैं अभी लास्ट में दो मिनट में एक बात मैं आपसे शेयर कर लूं, ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त अवस्था बनाने का पासपोर्ट क्या है, क्या है पासपोर्ट बताइए, क्या है ये मुरली, है ना, जैसे आज की मुरली कल की मुरली, तो ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त अवस्था बनाने का पासपोर्ट है मुरली। मुरली का मन, मुरली कोई कागज नहीं, मुरली मेरे मन में समा जाए, मन मनाभव हो जाए, हर विचार में, हर भावना में, वृत्ति स्मृति में, एक एक महावाक्य वरदान स्लोगन उसका मैं स्वरूप बन जाऊं, ज्ञान स्वरूप, ये पासपोर्ट है, ठीक है, बनना है। इसलिए मैं मुरली जेब में रखता हूं, और दिन में कितनी बार पढ़ता हूं मुझे पता नहीं, कितनी बार एक एक लाइन को बार बार रिवाइज करता हूं, जो भूल जाती है अंदर से फिर उसको बार बार कोशिश करता हूं मेरे जीवन में आई कि नहीं आई। होमवर्क है, सुबह शाम तक अंदर आना चाहिए, ये होमवर्क है। तो ये है मुरली पासपोर्ट, कहां किसका, ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त अवस्था, संपन्न और संपूर्ण बनने का पासपोर्ट है। और वीजा क्या है, पासपोर्ट की कैटेगरी नहीं होती है, वीजा की कैटेगरी होती है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का पासपोर्ट वीजा अलग होता है, मिनिस्टर्स का अलग होता है, ब्यूरोक्रेट्स का अलग होता है, स्टेट गेस्ट होते हैं उनका अलग होता है, साधारण वालों का अलग होता है। कि मुझे याद है एक बार हम लोग मॉरिशस में दो बार गए थे, तो स्टेट गेस्ट बन के गए थे, तो कैसे हमको एयरपोर्ट से निकले, एक ऑफिसर आए, दो ऑफिसर आए और हमको सीधा वहां से लिया, बिना किसी चेकिंग के हम गए और अलग से लेके हम गाड़ी में बैठा के हमको वहां ले गए सीधे। तो उनका अलग टाइप का वीजा था, तो वीजा अलग होता है। तो वीजा अगर आपकी आपकी पवित्रता वीजा है, अगर अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर सबको सत्य स्वरूप में उसको इमर्ज करके व्यवहार करते हैं, तो ये पवित्रता की पहली डिग्री है, साधारण डिग्री कहेंगे, जैसे जिसमें हम कई बार ऊपर नीचे भी हो जाते हैं। फिर लगाव झुकाव प्रभाव टकराव किसी से ना हो इस दुनिया में, तो सेकेंड डिग्री की पवित्रता है। तीसरी डिग्री की पवित्रता कौन सी है, क्या क्यों कैसे भी ना हो, ड्रामा में कुछ भी होता रहे, कोई कुछ भी करता रहे यज्ञ में या बाहर, मन में प्रश्न ना आए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वेद संकल्प आना भी अपवित्रता है ना। शिव बाबा की डायरेक्शन में हो रहा है, उस डायरेक्शन में क्वेश्चन लगा रहे हैं, ये भी अपवित्रता है, ये भी योग लगने नहीं देगा, टूट जाएगा बार बार योग। तो ये तीसरी डिग्री की पवित्रता। चौथी डिग्री की पवित्रता कौन सी है? वो है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अंश भी ना हो, ये चौथी डिग्री की पवित्रता है। और हाईएस्ट डिग्री की पवित्रता कौन सी है? ब्रह्मचारी, निरंतर मैं निराकारी आत्मा बनकर निराकार बाप से निराकार वतन में कंबाइंड रहूं और ब्रह्मा बाबा से हर कर्म कंपेयर करूं, सोचना देखना सुनना बोलना खाना पीना ब्रह्मा बाबा को फॉलो करूं, ब्रह्मचारी, ये हाईएस्ट डिग्री की पवित्रता है। तो ये है वीजा की अलग अलग कैटेगरीज, पांच कैटेगरी है वीजा की, आपको कौन से वाला चाहिए देख लो। धर्मराज आपको सलाम करेगा ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी को, ठीक है, बाकी को बीच में थोड़ा थोड़ा चेक कर सकता है, ठीक है, ये वीजा है। और टिकट कौन सी है सूक्ष्म वतन में जाने की, बोलो, ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त अवस्था बनाने की टिकट कौन सी है? दैवी गुणों की धारणा। 36 के 36 दैवी गुण अपने अंदर आए कि नहीं आए? देखो संपन्न सर्वगुण संपन्न बने कि नहीं बने, संपूर्ण निर्विकारी बने कि नहीं बने, हर गुण में 100% बने कि नहीं बने, इसमें भी कैटेगरी होती है टिकट में भी। एक टिकट बिजनेस क्लास होती है एयरप्लेन में ना, एक बहुत अच्छा लेग स्पेस होता है डिलक्स क्लास होती है ना, एक इकोनॉमी क्लास में भी थोड़ी ज्यादा लेग स्पेस वाली होती है और इकोनॉमी क्लास होती है, चार चार कैटेगरी होती है ना उसमें भी। तो यहां भी टिकट की कैटेगरी है। तो दैवी गुण, एक तो मेरे 36 गुण पूरे नहीं हुए, एक 36 गुण आ गए कि तू कम है, डिग्री कम है, 40% 50% है, एक 100% है, तो वो बिजनेस क्लास में आराम से जाएंगे, सो के जाओ, है ना। ये है हमें बिजनेस क्लास कैटेगरी, राइट। तो वीजा ये है दैवी गुण 36 के, सर्वगुण संपन्न 16 का संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, देवान का भी अंश ना रहे, मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म, ये जो है ये हमारी टिकट है। और फिर है लास्ट में है पैसे मनी, वहां ठहरे हम बाबा के गोद में लंबा समय, नहीं तो हम क्या कहते हैं, 1 सेकंड गए 10 सेकंड टिकट ठहरे वापस नीचे आ गए, जैसे पैसे ही नहीं है ठहरने के, है ना। वो क्या है? बेहद की निस्वार्थ भाव की सेवा, जितना बेहद की निस्वार्थ भाव की सेवा करेंगे, बीज रूप बन के बीज रूप बाप से कंबाइंड होकर सूक्ष्म परमधाम में और सारे कलवेश को सकाश देते रहेंगे बिना किसी स्वार्थ की भावना के, नाम वांछन की इच्छा के, तब दुआएं मिलती हैं। दुआएं, जितनी दुआएं इकट्ठी होंगी उतना लंबा समय हम सूक्ष्म वतन बाप दादा की गोद में रहेंगे, उतना लंबा समय हम परमधाम में बाप दादा के साथ रहेंगे और बाबा के साथ जाएंगे, साथी बन के जाएंगे, साथी बन के आएंगे। तो याद हो गया पासपोर्ट, पासपोर्ट क्या, मुरली, वीजा, पवित्रता कौन सी कैटेगरी चाहिए, और फिर दैवी गुण टिकट, और फिर दुआओं बेहद की निस्वार्थ भाव की सेवा, वो है क्या है, पैसा, वहां होटल में ठहरना पड़ता है ना, होटल में ठहरते ना कहीं जाते हैं तो खान पान खाना पीना भी करना पड़ता है, तो लंबे समय बाबा की गोद में खाओ पियो, बाबा आपको सूबी रस पिलाएगा, प्यार करेगा, बात करेगा, नहीं तो बात करने का समय ही नहीं मिलेगा, आपके पैसे ही नहीं है आपके पास तो ठहरने के, बाबा की गोद में बैठने के पैसे ही नहीं है। तो ये तरीका है ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त अवस्था बनाने का। ओम शांति। चलिए अब हम सभी बाबा की गोद में चलते हैं, सभी चले आधे घंटे के लिए, 8 बजे तक बैठना है हमको ना, बैठेंगे सभी 8 बजे तक, पावरफुल। अभी हम ये ऐसे अभी जो जो काम अभी अभी करना है ना, अभी करके देखो, है ना, ये जो मैंने बात की ना अभी, अभी जो बात की ना आपसे, सच्चा ब्राह्मण बनने के लिए क्या और अव्यक्त अवस्था बनाने के लिए, फरिश्ता बनने के लिए क्या करना है, और फिर ये पासपोर्ट चेक कर लो, वीजा चेक कर लो, है ना, और टिकट चेक कर लो, और कौन सी कैटेगरी की टिकट, चेंज भी करा सकते हो टिकट, थोड़े पैसे ज्यादा जमा करा के टिकट, बड़ी बड़ी टिकट मिल जाती है, डिलक्स बिजनेस क्लास की मिल जाती है। और फिर दुआएं इकट्ठी कर लो, बेहद के बीज रूप बन के बीज रूप आपसे कंबाइंड होके सारे क्लबिश को सकाश दो, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग की आत्मा को। चलिए चलते हैं घंटे के लिए बाबा के, 52 मिनट के लिए बाबा की याद में चलते हैं। सभी उड़ जाओ, एक ही संकल्प के साथ देह और देह की दुनिया से मन बुद्धि को समेट लो और अशरीर आत्मा बन के पहले परमधाम घर में अशरीर बाप से कंबाइंड होकर अपनी बैटरी चार्ज करते हैं और फिर सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में आएंगे।
से भी पार है
सूक्ष्मता से अपने दिल को चेक करें, मेरी दिल सच्ची और साफ है। अपने दिल में बाबा से सभी नौ संबंधों की अनुभूति करें, कैसे शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा मुझे मां की पालना और प्यार दे रहे हैं। दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि का वरदान उसे अपने अंदर रियलाइज करें, महसूस करें दिव्य दृष्टि को। अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप को परम धाम में मैं कैसे आत्मा कैसे बाप के साथ ज्ञान सूर्य के साथ कैसे मास्टर ज्ञान सूर्य बन। पावन सत्व प्रधान अवस्था में अपने आदि देवी देवता स्वरूप को इमर्ज करें, देखे अपने अंदर सर्वगुण संपन्न स्थिति को, 36 देवी गुणों को अपने अंदर महसूस करें। हरि गुण में अपने आप को 16 कला संपूर्ण स्थिति में अनुभव करें। सत्यता, पवित्रता, निर्भयता, निर्भयता अर्थात बुद्धि रूपी आंख, परम धाम में बाप से कंबाइंड हूं। मन रूपी आंख, अपने लक्ष्य सुखधाम में श्री कृष्ण के स्वरूप पे रहे कि मुझे ऐसा बनना है। ये दिव्य दृष्टि से अपने आप को महसूस करें जो मेरा वरदान है, शिव बाबा ने ब्रह्मा मां द्वारा मुझे दिया है। महसूस करें परमधाम की अवस्था को, मैं आत्मा बाप के साथ कंबाइंड। और सुखधाम में मैं आत्मा श्री कृष्ण के समान सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी अवस्था में स्वयं को देखें। सभ्यता ब्राह्मणों की सभ्यता, ब्राह्मण कल्चर की सभ्यता, अपनी मर्यादाएं और नियमों को चेक करें। अपनी चारों मर्यादाएं, चारों नियमों को चेक करें। सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में बैठ के चेक करें। फरिश्तों की सभ्यता क्या होती है वो देखें, कैसे फरिश्ते आपस में व्यवहार करते हैं, फरिश्तों की कल्चर क्या होती है। दैवी सभ्यता, अंतर्मुख की स्थिति में चले जाएं। मैं आत्मा कैसे आत्मिक स्थिति में स्थित होकर व्यक्ति के मध्य कैसे मैं ज्ञान पवित्रता के बारे में उसको महसूस करें, आंखों से कैसे पवित्रता शांति प्रेम सातों एनर्जी को प्रवाहित करें, रोम रोम से सातवें एनर्जी को प्रवाहित करें। अंतर्मुखता इनसाइड आउट अप्रोच, परमात्मा पिता के साथ कंबाइंड और मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति से मैं सारे विश्व को आलोकित कर रही हूं। बेहद की वैराग्य वृत्ति, संसार से उपराम, अनासक्त और उपराम, उस एक के अंत में खो जाएं। ज्ञान सागर के अंत में खो जाएं, समा जाएं उस ज्ञान के सागर में। मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मुझ आत्मा के सर्व संबंध उस परमात्मा पिता से है। एक एक संबंध को महसूस करें। ल मतलब लीन हो जाएं उस एक संबंध के प्यार में, उस पालना में। साक्षी दृष्टा बन जाए इस देह और देह की दुनिया से। इसी में समा जाए, इसी में खो जाए। पवित्रता के सागर के अंत में समा जाए, खो जाए। बिंदु बन के परमधाम घर में बिंदु बाप से कंबाइंड हो जाए, यही पवित्रता का अंत का अंत है। शांति के सागर के अंत में समा जाए। सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम के सागर में समा जाए। सूक्ष्म वतन में बाप दादा की गोद में यह अनुभूति हम कर रहे हैं, याद रहे। सूक्ष्म वतन में बाप दादा की बेहद की गोद में हम समाये हुए हैं। अतिंद्रिय सुख के सागर के अंत में समा जाए। आनंद के सागर के अंत में समा जाए। अब इसी में एकाग्र हो जाए, इसी अनुभूतियों में एकाग्र हो जाए। अतिंद्रिय सुख आनंद की अनुभूति में एकाग्र हो जाए। महसूस करें उस सागर की गोद में मैं समाया हूं, लवलीन अवस्था में। सर्वशक्तिमान बाप की गोद में समा जाए।